نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل روز قیامت میں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا عزت و اکرام والے لوگ کون ہیں. رسپیکٹ جس کو کہتے ہیں, بہت ہی معتبر عزت والے لوگ, بہت بڑی خبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھائی میری عزت ہو, اور اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیتا ہے. بعض دفعہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ اس سے لوگ میری عزت کریں گے, اس عہدے کو, اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتا ہے کہ لوگ مجھے عزت دار سمجھیں, مجھے رسپیکٹ کریں. تو کتنی رسپیکٹ ہوتی ہے آدمی کی, کون کرتا ہے کسی کی عزت؟ وہ آپ ہمارے سامنے ہے, بہت بڑا عہدہ مل گیا, بہت بڑا رتبہ مل گیا, تو لوگ تو اس سے جلتے ہیں, اور جب وہ سودے سے اتر گیا تو پھر تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا, ساری عزتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. دنیا کے اندر تو ہر چیز جو ہے ناپائیدار چیز ہے, یہاں کی عزت کیا عزت ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہاں کی بڑائی کوئی بڑائی نہیں, یہ تو خواب ہے. کون بڑا ہوتا ہے, کون چھوٹا ہوتا ہے, لیکن کتنا بڑا ایک شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ آج ہم دنیا کی طرف غور سے دیکھیں تو مین ٹاپک یہی ہے. الیکشن لڑ رہے ہیں لوگ, منسٹر بن رہے ہیں, پڑھائی اس درجے پہ کر رہے ہیں, یعنی تو ہر چیز کا معاملہ یہ ہو گیا کہ میری عزت کی جائے, مجھے لوگ رسپیکٹ کریں. میری ایک ایسی اندر انسان کی ایک انا چھپی ہوئی ایک بیماری ہے بہت بڑی, اس رسپیکٹ کے لیے جائز ناجائز سب کام کر جاتے ہیں, نہ ملتی پھر بھی نہیں. تو اس کے مقابلے میں جو ہے آخرت کی اگر عزت مل جائے, بولے سبحان اللہ, تو اس عزت کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, کچھ سوچ سکتا ہے کہ وہاں کی بے عزتی اور وہاں کی عزت دونوں بہت زبردست چیز ہے کہ اللہ وہاں کی ہمیں بے عزتی اور رسوائی سے بچائے, اللہ تعالیٰ وہاں کی حقیقی عزت عطا فرمائے. اصل عزت دار تو وہ لوگ ہوں گے جہاں وہاں پر عزت ملے انسان کو, وہاں کی رسوائی ہو, وہاں کی بری حالت, نہ کوئی سفارش, نہ کوئی پوچھنے والا, بلکہ بائن اس کے گناہ اس کے سامنے نظر آ رہے ہیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے گناہوں کو, اس کی شکلوں کو دیکھ رہے ہیں. جو اندہ کا انتر عزیز الحکیم قرآن کہتے ہیں کہ بہت بڑا سمجھتا تھا تو اپنے آپ کو دنیا میں بڑا اونچا سمجھتا تھا, لے مزہ اب اس کا, دکھ اندہ کا انتر عزیز چکھ مزہ, اس عزت کا دو عزت سمجھتا تھا. تو دو سائڈ ہیں ہمارے سامنے اس دنیا میں, غور کریں. ایک دنیا کی عزت چاہیے انسان کو, اس کے لیے محنت کرتا ہے جو کہ بالکل فضول ہے, نہ پایا نہ دولت سے عزت ملتی ہے نہ کچھ ملتی ہے. ایک آخرت کی عزت ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے اور پائیدار ہے, فور ایور ہے اور نہ ختم ہونے والی عزت, اصل عزت. تو اس کے بارے میں اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنا میسج, कि कल पता चलेगा लोगों को, कल से क्या मुराद कि कल से यह है कि जिस कदम कल आने वाली है, बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है, क़यामत दूर नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा। जो आज हमारे घर में होते थे, हमारे वालदैन, हमारे चचा, हमारे मामू, हमारे रिश्तेदार, वो ख्वाब बन गए, कहे ना इसी तरह हमने गायब हो जाना है इस दिन इसमें से, दुनिया से। तो अल्लाह ने फरमाते कल होंगे, बहुत जल्द है, अल्लाह ताला फरमाते तब मालूम हो जाएगा पूरी दुनिया को, पूरे हश्र में मालूम होगा, दुनिया देखेगी कि कौन इज्जत और इकराम वाले लोग हैं, कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह ताला हमें पूरा हश्र देखेगा उनको, ऐसा इज्जत एहतराम होगा उनका कि सारी दुनिया हैरान होगी देखकर कौन लोग है। बताने का मतलब क्या है नबी पाक का, उत्साह करें, पूछेंगे तो आशिक थे ना इस चीज के, टाइम में बैठने वाले लोग थे, एक खजूर और पानी पीने वाले लोग थे, कपड़ा भी उनके पास नहीं था, तो उनको कितनी बड़ी तसल्ली दी जा रही है कि इससे इज्जत नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, ये फॉल्स जो रूम है ये तो अभी तबाह हो जाएंगे थोड़े दिनों में, आप ही कैप्चर करेंगे इसको। तो सबक हम बड़े हैरान हुए, सबको इज्जत तो अगली चाहिए थी कि यार उसने वो कौन लोग होंगे जिन्हें कितने इज्जत होता, अल्लाह फरमा रहे हैं कि कल सारी दुनिया देखेगी। अब अमल बताया अल्लाह के नबी, असल चीज तो ये है ना, ये सुनने वाली बातें नहीं है, करने वाली बातें, कल चाहिए ना इज्जत हमें, ये सोच ले। तो यहां गारंटी दे रहे हैं अल्लाह के नबी, ऐसे हदीस सुना रहा हूं आपको, कोई कल की गारंटी दे रहे हैं उस वक्त की, आज वो अमल हम कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या बनेंगे कि सोचे हशर के अंदर पता चलेगा कि कितने रिस्पेक्टफुल लोग हैं, ऐसे वैसे नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा उनका, जिसको अल्लाह गया है, मुझे बताएं आप, जिसको अल्लाह गया है कि सबसे बेहतरीन मौत और रिस्पेक्ट आदमी है, तो पूरी कायनात झुक जाएगी उसके आगे, पूरी कायनात झुक जाएगी उसके आगे। तो फिर अल्लाह के नबी साहब यार सुनो वो कौन लोग होंगे, मतलब कि आखिर क्या उनमें क्या खूबी क्या होगी कि अल्लाह इतनी इज्जत देगा उनको, अम्मीज होंगे, बाहर से होंगे, कौन लोग होंगे वो, क्या चीज उनके पास होगी। तो फिर अल्लाह के नबी ने इसको अमल बताया, सुभानअल्लाह, करने वाली बात है, सुनने वाली बात नहीं। क्या अमल बताया कि वो लोग हैं कि दुनिया के अंदर वो ये अमल करते थे जिसका बदला अल्लाह ताला देगा, मुझे क्या अमल, मस्जिदों के अंदर, कहां पर, मस्जिदों के अंदर अल्लाह के जिक्र की मजलिसों को मुनाकिद करते थे, कितनी बड़ी गारंटी इस चीज की कि घर हो अल्लाह का, बंदा सारे काम काज छोड़ के और अल्लाह का जिक्र करने बैठ जाए, अकेले नहीं, मजलिस के गैदरिंग हो, कितना बड़ा अल्लाह ने इनाम रखा है कि कल पूरे रोजा शिरको कितनी इज्जत होगी उनकी, ये भी हदीस बताइए, मौत तो हमारे ऊपर खड़ी हुई है, कितनी देर गोलियां बचा लेंगे, दवाई बचा लेंगे, कैप्सूल बचा लेंगे, असल चीज उसकी तैयारी करे आदमी, मौत से क्या खबर, तो कितनी बड़ी चीज है कि आग से पता चल रहा है हमें कि जनाब फला में आज मजलिस हो रही है, वो तो यार बहुत दूर है, हमारी मस्जिद में होगी फिर हम वहां पर फिर बैठेंगे, बताए जो लिए आज ये लोग कुर्बानी दे रहे हैं अपने आसाइश को, आराम को, अपने वक्त को, अपनी प्यारी चीजों को छोड़ के सिर्फ इस हदीस की वजह से कि अल्लाह ताला इतना राजी होगा कि हमें रिस्पेक्ट मिल जाएगी, ना उनको किसी चीज का लालच है ना कुछ है, बस यही कि हमें भोज की हदीस, हमें कुछ रोक भी रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कहता जानो तो यार छोड़ो, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि जिक्र हो रहा, जिक्र की मस्जिद हो रही है फरा मस्जिद में, मैं पहुंचूंगा मैं वहां, और जिसके दिल में अल्लाह मोहब्बत पैदा करते हैं वो दीवाना बार भागता है वहां पर, दीवाना बार भागता है, चलो यार उसको एक उछाट सी हो जाती दिल के अंदर, जैसे ऐलान होता है कि फलाने का मस्जिद हो रही है, मजलिस होगी, तो मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी जमात वहां पहुंच जाती है। फिर कितना बड़ा करम है, कितनी बड़ी, मैं हदीस में नमाज पढ़ते ही याद आई कि मैं अपने बारे में सोच रहा था अल्लाह कितना बड़ा तू करम दे रहा है, कितना बड़ा फजल दे रहा है। यहाँ नहीं होती मस्जिद तो सिकरिया में हो जाती, सिकरिया में होती तो अल्फलाम अल्फलाम में तो किसी मस्जिद तो होनी थी, क्योंकि हमारी रात तो जाया जाती ही नहीं बिल्कुल जिक्र के बगैर। और जिसकी कुर्बान जाऊँ अल्लाह वालों की मस्जिद की, कि जो ऐसी आदत बंदे में डालती है कि 50-60 साल से यही अमल जिक्र ही करने वाला, वो भी मस्जिदों में, अल्लाह ताला कंटे दे कि यहाँ फिक्र ना करो, कोई इज्जत करता है सलाम करता है, जूते मारता है, कोई कहता चलो बाहर निकालो कितने पैसे, गाड़ी कौन सी इसके नंबर की गाड़ी है, कौन सा मकान इसका है, छोड़ो यार आदमी की बात करो, इसके टीचर आदमी इसके पास क्या रखा है, ये कौन सी औरत है यार, क्या नहीं कुछ वो तालीम है तुम्हारे पास, पढ़े लिखे हो, चलो पीछे हटो, मैं यहाँ मैं बता रहा हूँ लोग ऐसे करते हैं दुनिया में। तेरे क्या तालीम है तेरे भाव, तू क्या है यार, तू कौन सूफी क्या होता है क्या जिक्र, क्योंकि दिमाग पे चर्बी चढ़ेगी ना इस दुनिया की हमारे, इस हदीस को सुन ले आप जो अल्लाह के कलाम और हदीसों पे यकीन करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है। इस वजह से आज ऐलान हुआ था हमारे को जगह नहीं चाहिए थी, लेकिन वो लोग बूढ़े बूढ़े लोग जिनके वीजे कट चुके हैं वो मुझे से भाग गए, बताया अजीब बात लगती है कि कितना गलब है आज शैतान का हमारे पास, कि हमें आखिरत की तैयारी नहीं चाहिए, हमें टूट के चाहिए बस, जिसपे हम दिन मुतमिन वो करके बस बस उतर गया बोझ उतर गया खत्म खत्म। अल्लाह की नेमतों को देखेंगे कितनी बड़ी नेमत दे रहा है कि आपको जाना नहीं पड़ रहा, खुद आपकी मस्जिद में एक जमात आ रही है बीमारी की हालत में, किसी को कुछ कुछ छोड़ के कुछ छोड़कर, किस लिए, तो क्या ये रिस्पेक्ट, अल्लाह कहता है रिस्पेक्ट को फिर अल्लाह की दी हुई इज्जत, सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह।
एक बादशाह इज्जत दे दे ना किसी को, यार तू मेरे साथ बैठ जा, ये चेयर तेरी है मेरे साथ बैठ जा, बॉस वो तो फूलन समाएगा, और लोग भी सुना क्या हाल चाल है ठीक है, और फला बादशाह उसके साथ बिठाया यार, उसके साथ बात कर रहा था, पूरी चीज यार ये तो बड़ा बहुत ऊंची चीज है, सुभान अल्लाह बताओ ये कुछ चीज अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसी इज्जत, इज्जत क्या होगी कि इन लोगों को अल्लाह फरमा रहा है कि मैं याकूत के मोतियों के तख्तों में बिठाऊंगा रसूल, ऐसे नहीं दिखाऊंगा इन लोगों को, छोटी जमात नहीं है कि ऐसे नहीं यानी छुपाऊंगा उनको, नहीं तख्त बिछाए जाएंगे रोज़े हश्र के अंदर। क्या तो कहते हैं गलत बातें हैं हदीस में भाई, हर किताब में आपको नजर आ जाएंगी, पढ़ते भी होंगे सुनते भी होंगे ग्राम से, तख्त भी सहे जाएंगे और फिर उनको सजाया जाएगा उन आदमियों को, और हसीन कर दिया जाएगा उनको, तो कौन होंगे बेचारे भूखे नगे, ना कोई दुकान होगी ना कारोबार होगा ना कुछ होगा, ना उनको इस बात पर सोचा होगा, ना कोई इतनी ऊंची चीज होगी, ना कोई उसको सलाम करता होगा। और जब वहां पर फिक्रा अजीब है हदीस के अंदर देखें, तख्त पे बिठा दिया जाएगा और इतने हसीन कर दिए जाएंगे उनके चेहरों को कि जैसे कि चौदहवीं का रात चमक चांद चमकता है, इतने हसीन हो जाएंगे, यानी वो असल चेहरे नहीं होगा, वो तो हुस्न के एक मेंबर बन जाएंगे, जो लोग उनकी रोशनी देख लेंगे हसन के मैदान में, तो फिर लोग पुकारेंगे ये किधर आ गए, केड़े बंदे ने भाई पहचान नहीं सकेंगे कौन से लोग हैं, तो उस वक्त क्या होगा, सुभान अल्लाह चौदहवीं तक शहर चमक रहे उनके, ये अब आवाज आएगी ये अल्लाह ये कौन लोग हैं, ये अंबिया हैं, ये कौन है, ये औलिया हैं, ये कौन लोग हैं, अंबिया के बारे में सुनते हैं वो तो बड़ी ऊंची जमात होगी, तो हमें बताया जाए इंट्रोडक्शन कराया जाए ये है कौन लोग, हम जानते सी इतने इस हालत के लिए दुनिया अपने अपने हिसाब किताब में है और कोई किधर जा रहा है पूरे हाल में है, और इनको इतना बड़ा एजाज कराम दिया जा रहा है उस हालत के अंदर, तरफ है यही तो वो लोग हैं जिसके बारे में मैंने दुनिया में कहा था, ये वो लोग हैं जो मस्जिद में बैठ के मेरा जिक्र किया करते थे, उनकी सुबह भी अल्लाह के जिक्र से होती थी, उनकी शाम भी अल्लाह का जिक्र से होती थी, लेकिन ऐसे ही नहीं कि वो ऑटोमेटिक बैटरी लगी हुई थी, नहीं, वो कुर्बानी देते थे, कुर्बानी देकर आते थे, दूर दराज से आते थे, बुढ़ापा उनको और जवान कर देता था, जिक्र की सिफत है, उसको और जवान कर देता है बुढ़ापा, चलते आते हैं अल्लाह का जिक्र के अंदर, भागते फिरते हैं, किस मस्जिद में अल्लाह का जिक्र है, कहाँ जिक्र है, दुआ करें अल्लाह पाक हमें शौक पैदा फरमा दे, क्योंकि मौत बहुत गरीब है इंसान की, और ये ऐसा अमल है अल्लाह का जिक्र, देखो ना कोई मेहनत ही नहीं है, इनाम देखें आप और मेहनत देखें, गर्म मस्जिद है माशाल्लाह, हीटर चीटर चल रहा है, बैठे हैं आराम से, लाइटें चल रही हैं, गाड़ी अल्लाह ने आपको दी हुई है, खाना खा के आप आए, रिज़्क दिया है, और वैसे ही लेट जाते, लेकिन कितना अल्लाह का करम हुआ है, हम अपनी पिछली जिंदगी देखें, कितनी बड़ी एक हदीस है जिसमें कहा है अल्लाह ने कि या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ चीज़ से कि मैं अपनी पहली हालत में वापस आ जाऊँ, ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो बानी है इस सिलसिले के, मुजद्दिद सिलसिले के, कि सबसे बड़ा महरूम वो शख्स है जो इस सिलसिले से महरूम हो गया, शैतान ने उसको वरगा दिया, उसको निकाल दिया सिलसिले से, हज़रत ख्वाजा मासूम फरमाते हैं, क्यों फरमाते हैं कि ये सिलसिला जो तसव्वुफ़ का है ना, नक्शबंदी सिलसिला, ये सबसे आला आला सिलसिला है, ये उनके लफ्ज में मैं आपको बता रहा हूँ, हर सिलसिले को जानते थे, सबसे आला और अच्छा सिलसिला है फरमाते हैं, इसलिए कि दो चीजें जो हैं हमारे दीन का मुंबा है, वो दोनों चीजों से सिलसिला शुरू होता है, उसकी शर्त है सिलसिले के अंदर कौन सी, दो अजीम शर्त, दो इसी उसके बगैर तो इस सिलसिले में चल नहीं सकता, जो भी नक्शबंदी बनेगा सबसे पहले दो ये शर्त उसके ऊपर लगाई जाती है, बैत होता है औरत हो या मर्द, अभी तो वक्त है लोग कमजोर होते हैं, नहीं जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तमाशी चाहिए मजे चाहिए नफ्स के, वो कहाँ टिक सकते हैं ऐसे ऐसे सिलसिले के अंदर, वो तो रिवर्स मारते हैं, पीछे हट जाते हैं, नहीं जी ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा ये बड़े बहुत, क्योंकि दो चीजें ऐसी रखते हैं सिलसिले के अंदर जो इस सिलसिले में पाई जाती है, और शर्त है वो क्या है, शरीयत और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो चीजें नबी पाक की सुन्नत लाजिम है इस सिलसिले के अंदर, तभी देखते नहीं आप कि जो भी सिलसिले में अच्छी नीयत से दाखिल होता है एकदम सबसे पहले वो सुन्नत पे चलना शुरू हो जाते हैं, सुन्नत से मोहब्बत होती है, ये जान है दीन की, इसके बगैर तो हर जगह नाकाम है, इस पहली चीज इस सिलसिले पैदा कर देते हैं, इसलिए उसको औला और अफजल कहा जाता है, और वजह नहीं है, अल्लाह ताला ने सिलसिले में ये खासियत पैदा की है, तभी कहा ख्वाजा मासूम कि महरूम हो गया वो शख्स कि दाखिल हो सिलसिले में, फिर नफ्स की वजह से किसी तो बड़ा मुश्किल है, ये चक्कर दे दबा के मकसूरा ने वो पीछे निकल गया, इतना बड़ा महरूम है जिसका, इतना बड़ा अल्लाह का वली अपनी जबान से निकाल रहा है, जिसके वालिद किरामी की जबान से निकला था कि जो सिलसिले में आ गया मैं गारंटी देता हूं कि इसकी मगफरत होगी, तो ये इन लोगों में निकला था, अलहम होते हैं उन लोग, तो दुनिया में ना देखें कि एक सिलसिले के बाद जाने के बाद नफरत करने के बाद छोड़ने के बाद बड़े तरक्कियों पर बड़ा ये कर रहा है फला कर रहा है, वो तो आखिर तो पता लगे ठप्पा लग गया पीछे, ठप्पे लगते हैं याद है महरूमी के, तो हमें किसका पता चलता है, हमें इन बातों से ही पता चलता है कि कौन महरूम है और कौन जमा हुआ है सिलसिले पर, लेकिन शैतान तो अपना काम करेगा, तो फरमाए औला अफसल जिक्र है सिलसिला है, ये दुनिया वाला सिलसिला नहीं है कि इसमें कोई दुनिया है, नहीं स्टार्ट इसका शरीर से होता है और सुन्नत रसूल से होता है, और सबसे बड़ी चीज तनाव इसमें क्या है, बिद्दत है, नक्शबंदी कभी बिद्दत को अख्तियार नहीं करता, क्योंकि उसने चलना जो सुन्नत पर है, बिद्दत कहां से आएगी, जहां गया तो रोशनी होगी अंधेरा होगा, जब उसने सुन्नत को पकड़ लिया तो बिद्दत हो गायब खत्म, दलील नहीं उसके पास, हर चीज की दलील मौजूद होती है नक्शबंदी के पास, हर चीज की दलील होगी अलहमदिल्ला, सुन्नत के बारे चलेगा नहीं दलील देगा, मैं सबसे आला और औला, फिर एक और तारीफ की सिलसिले की कि महरूम तरी इंसान है और खुशकस्मत इंसान है, चाहे कितना कमजोर है, चाहे बेचारा घसीट घसीट के चल रहा है, बस उंगली पकड़ी उसने सिलसिले की, बस कामयाब है वो शख्स, वो कामयाब है। वही फरमाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं आप, मुख्तबात में लिखे ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह कहते हैं कि इस सिलसिले में दूसरी सी खासियत क्या है कि उसको पता चले ना समझे ना समझे, लेकिन एकदम उसको अल्लाह का कुर्ब मिलता है। कभी ना रोए धोए करें जी हम तो जिक्र भी करें कुछ नहीं, नहीं ये गारंटी पीछे आ रही है तू अल्लाह के करीब हो रहा है, हर सिलसिले हर जिक्र में तू करीब हो जाते। इसके सबक ही ऐसे हैं, सबक देते ना शेख सबक, हम तो लेते हैं लेते, तो मेहनत करो, सबक लो, इखलास पैदा करो, कोशिश करो, आपको मालूम कि एक सबक के बाद दूसरे सबक में उसका मुकाम कितना बुलंद हो जाता है, कितना बुलंद होता है कि और करीब हो जाता है अल्लाह ताला के। बस इतनी किताबें लिखी कि पहला सबक, दूसरा सबक, तीसरा सबक, क्या चीज है, सबक नहीं मिला, महरूम ही है इसमें, सोचने की वजह क्या है। लेकिन कितना भी टूटा फूटा है, फरमाते हैं कि कुर्ब अल्लाह का उसको नसीब होता है बानिस्बत दूसरे सिलसिलों के, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा करीब होता है। तो ये तो भाई जिससे वो अगली चीज है फरमाई, बहुत ही जबरदस्त चीज है कि जो चीज अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो हर वक्त वही काम करता है, क्या जिक्र अल्लाह। लोगों की तो जुबान चलती है, किसी के हाथ चलते हैं, लेकिन उनके दिल चलते हैं, उनके जिस्म की रूह चलते हैं, ये सारी लाड़ी उनमें क्या होता है, सुल्तान इसकार जारी हो जाता है उनके अंदर। ये पता चलेगा उस वक्त जो ध्यान निकल रही होगी कि भाई क्या चीज था नक्शबंदी सिलसिला और कितनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी थी और कितनी हमें कदर करनी चाहिए थी। माशाल्लाह नेमत बहुत अच्छी है, आई अप्रिशिएट, अल्लाह का लाख लाख करूँ शुक्र करता हूँ, बड़ी अच्छी जमात अल्लाह ने पैदा की है यहाँ जिक्र करने वाले, पूरे यूके में, सिर्फ बॉर्डर में नहीं है, पूरे इंग्लैंड में। अब आप थोड़ी बैठे हैं, चार तो सेंटर है जिक्र के जो इस वक्त माशाल्लाह नूर से घूम रहे होंगे सारे, और कितनी खवातीन हूँ जो बैठी इस वक्त अल्लाह के जिक्र में मस्त होंगी बेचारी। तो ये कितना बड़ा कलाम है मुझे बताया अल्लाह ताला। तो जब भी आप सुनेंगे फला मुकाम पे जिक्र हो रहा है या फला मस्जिद कायम हो रही है, भागते जाए इस हदीस को याद रखें कि कल या बहुत जल्दी तुम उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां अल्लाह ताला तुम्हारा सबसे ज्यादा इज्जत करेगा तुम्हारी और रिस्पेक्टेड पीपल होंगे। चलो बस एक ही हदीस याद आ गई, आप कुछ टाइम ले लिया मैंने, तो जिक्र ही करना था इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी किसी हदीसों से कैसी कैसी इंसान को चीजें मिलती हैं। और एक चीज ये देखें, मुजाहिदे भी आदमी से इतने बड़े नहीं होते ना भाई कि भाई ये अमल करो तो इस मुकाम पर पहुंचो। देखें आप पिछले जमाने में मुजाहिदे करते थे 40-40 साल तक, 30-30 साल तक एक अमल पे लगे हैं, खाना पीना छोड़ा है, जंगलों में फिर रहे हैं, इस मकसद के लिए अल्लाह मिल जाए। लेकिन जब नक्शबंदी सिलसिला आया सुबहानअल्लाह उतरी गए बदल गया, सब जंगल खत्म हो गए, चीले खत्म हो गए, सब इतनी बातें खत्म, फिर क्या हो, सब एक ही चीज होगी, क्या सुन्नत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कहा मैं इसमें बंद कर देता हूँ, इसमें दो चीजें बस अल्लाह दे दी, क्या जिक्र अल्लाह और सुन्नत है रसूल, इतना आसान है बताए मुझे। घर से चलना है आपने, साथ में चलना है, चलो आज खाना जल्दी खा लेते हैं या जिक्र तो नहीं छोड़े, गाड़ी पकड़ के वहां जाओ। जिंदगी क्या पता कि जब तक इंसान की सेहत है उससे फायदा उठाए, लेकिन जिक्र करने वाला माशाल्लाह बूढ़ा नहीं होता है, जवान होता रहता है, जैसे जिक्र होता है ना अल्हम्दुलिल्लाह उसका शौक पड़ता रहता है, तजुर्बा करके देख लिया करना चाहिए ना भाई जिक्र। देखिए इतनी बड़ी चीज है और कितना एहसान है हम पर उन औलिया-ए-अल्लाह का जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, अल्लाह उनके कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए, मेहनत की जिन्होंने उठा पकड़ पकड़ के लोगों को लाए, नहीं भी जिक्र करो जिक्र करो। तो ये अल्लाह का करम है कि किसी वसीले से अल्लाह ताला सबको जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। लेकिन हमें कदर भी तो करनी चाहिए ना भाइयों, कदर भी करना चाहिए। اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نسلك من خير ما سالك من عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذ من عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله